तदांतर कपिला नगरी के कालेश्वर रामेश्वर आदि महिमा बताते हुए सूजी ने समुद्र के तट पर स्थित गौकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनाकर अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म्य कथा का वर्णन करने के लिए पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूजी बोले, ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वे ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य तथा उनका प्राकट्य तथा प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप में ही सुनूंगा। तुम सब लोग सुनो, मुनि, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महात्म्य को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वर, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी। चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगी। उन सब पत्नियों में जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, मात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं थी। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वह सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्हें जो भी दुख था उसे पिता को निवेदन किया। द्विजो, वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांति पूर्वक बोले। दक्ष ने कहा, कला निधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाले जितनी स्त्रियां हैं उन सबके प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे भी फिर ऐसा विषमापूर्त बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। सूत जी कहते हैं, महर्षि अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा नियोजित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए आज श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। सूत जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उन्हें क्षीण होते हुए उस समय सब महान हाहाकार बज गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे, हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुनि इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता, अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए। वहां मृत्युंजय का मंत्र विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर चंद्रमा ने वह 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जाप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां से स्थिर चित होकर लगातार खड़े हो गए। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल शंकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और सामने प्रकट हो गए। शंकर ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर देना प्राप्त करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न है तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है? तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर में इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में तुम निरंतर बढ़ते रहे। तदांतर चंद्रमा से भक्तिभाव से भगवान की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवता पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के मातम्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपवास के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धय कृत्य कृत्य है जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान भूतल को पवित्र करते हुए प्रभा क्षेत्र में विद्यमान है। वहीं संपूर्ण देवताओं में सोम कुंडी की भी स्थापना की गई है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पापनाशन तीर्थ के रूप प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वे सब पापों से मुक्ति हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने से मात्र नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है इस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग दिया। मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता तथा दूसरों को सुनाता है वे संपूर्ण अभिष्ट को पाता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है।